सर है। और कम से कम बहरहाल एक चीज़ मैं समझता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह अप्रिशिएट करने के काबिल हो रहे हैं कि कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसको बस पढ़ के गुजर जाया जाए, और उसमें कितने ज़्यादा पहलू निकलते हैं, कितनी गहराइयाँ बरामद होती हैं, कि मैं समझता हूँ कि अगर ये अप्रिसिएशन भी डेवलप हो रहा है ना माशाल्लाह, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो सर्व हो रहा है कि आप इस चीज़ को महसूस करें कि कुरान कोई सतही किताब नहीं है, किस कदर उसमें गहराई है। तो हमारे पास जितना वक्त है कि थोड़ा सा मैं सिर्फ तर्जुमे को ही, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा जब बात कर रहे थे तफसीर के हवाले से, तो सबसे पहले जिस एक्टिविटी को हमने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कुरान के अल्फाज का ज़ाहिर सही से समझना है, ज़ाहिर कुरान को समझना, और फिर उसकी मतलब किसी भी और दूसरी जहत में एंटर होना। तो तर्जुमे को थोड़ा सा हम दिक्कत के साथ नज़र कर लेते हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, ये एक फ़िक्रा। और अगर आप गौर करें तो तकरीबन ये मिलता जुलता है सूरह इखलास से कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि वहाँ पर खुदा ने हुआ पहले कहा, अल्लाह बाद में आया, यहाँ पर अल्लाह से बात शुरू हुई और हुआ तक जा रही है, इल्ला हुआ। और जैसा कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसमें आपने फरमाया कि हुआ इसमें ज़मीर नहीं है, यानी ये नहीं है कि वो, बल्कि हुआ भी खुदा के अस्मा में से एक इस्म है, और इसका मतलब ये है इसमें हुआ का कि खुदा मजहूल मुतलक है, वो जो बात अदील कर रहे थे, यानी कि अननोन फॉर एवर, मजहूल मुतलक। तो मजहूल मुतलक को कौन सा वर्ड कुरान करीम में आइडेंटिफाई करता है? हुआ। कि अगर आप अरबी लैंग्वेज में देखें तो हुआ इसमें ज़मीर है, ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी प्रोनाउन है। लेकिन किताबो तौहीद जो बहुत ही मारकतुल आरा अहादीस का मजमू है शेख सदूक का, उसमें सूरह इखलास में इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की हदीस नकल की है कि हुआ इसमें खुदा है, ये प्रोनाउन नहीं है।
अगर खुदा के बदल में आया तब है या
जी
किसी
नहीं,
हुआ खलील
खुदा के हवाले से,
और खुदा के हवाले से
जैसे हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ,
प्रोनाउन,
तो ये खुदा के हवाले से जब आएगा तो ये प्रोनाउन, ये नहीं कहा जाएगा वो खुदा वो अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के लिए ये और वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है? यानी कि जो हस्ती ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, उसको ये या वो कह के नहीं मुखातिब किया जा सकता।
वो अगर कह दे तो वो पास उसमें चला जाएगा, ये चीज यहाँ पर
वो
नहीं है
का
चाहे
मतलब
आए।
हाँ गायब है, या अगर इशारे के तौर पे लें तो खुदा लायक इशारा है,
जी
ना खुदा किसी जगह से गायब है ना
ना,
खुदा महदूद है कि उसकी तरफ इशारा किया जाए।
तो इसमें क्या लगेगा
ये इसमें ये नहीं कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की तफसीर है, ये आपको और कहीं ये इस किस्म के जुमले नहीं मिलेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, यानी अल्लाह से मुराद के वो हस्ती के जो तमाम सिफाते कमालिया जिसमें पाई जाती हैं, ला इलाहा नहीं है माबूद, इल्ला हुआ अगर आप तर्जुमा करेंगे मगर वही, लेकिन उसको डेप्थ में जाएंगे तो आप कहेंगे कि अल्लाह जिसके पास तमाम कमालात हैं उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं, और वही कौन है? मजहूल मुतलक है, यानी उस तक उसकी हकीकत तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। अच्छा, अब जो कुरान करीम का अंदाज है और स्पेशली उन सूरतों का अंदाज, उन आयतों का अंदाज के जो बहुत डीप है, यानी कुछ आयतें सिंपल हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो इतनी तौहीद के हवाले से इतनी डीप नहीं है जितना कि सूरह इखलास या इस किस्म की आयतें। तो उसका अंदाज ये है कि पहले खुदा की हकीकी मारिफत दिलाई गई है, फिर उसके बाद खुदा की वो सिफात बयान की गई हैं जिसका ताल्लुक इंसानों से, ठीक है? यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, यानी ये माबूद की हकीकत है, इसमें अल्लाह का मतलब है कि उस तमाम कमालात उसके पास हैं, जिसके पास तमाम कमालात हों उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं करनी चाहिए, इन ला इलाह। और जो माबूद हकीकी है वो नहीं है कि जिसको तुम अपनी अकल से पहचान सकते हो, वो हुआ है, यानी मजहूल मुतलक है। ठीक है, ये खुदा की हकीकत के हवाले से बात हुई। अब बात बयान होना शुरू हुई हमारे रेफरेंस से, वो कौन सी सिफत है कि जो खुदा ने सबसे पहले अपनी मखलूकात को दी है। मखलूकात को सबसे पहले कौन सी चीज मिली है खुदा से, उसके बाद सब कुछ मिला है, जिंदगी, अल-हय। यानी अब इसका आप वैसे तर्जुमा देखें लेकिन अल-हय, हय के ऊपर अल लग रहा है, यानी द लिविंग। तो इससे हमें यह बात समझ में आती है, यानी इसके इन सारे जितनी भी मबाहिस हैं अगर उनको सिर्फ एक लफ्ज से बदल दें तो शायद मामला बहुत क्लियर हो जाए कि वो जिंदगी है। ठीक है, खुदा हमेशा जिंदा रहने वाला का नहीं, इस चक्कर में नहीं पढ़ने की जरूरत है। अल-हय जो माबूद है, जो तमाम सिफात कमालिया का हामिल है, ही इज द लाइफ, जिससे तमाम जिंदगी, जितनी भी जिंदगी कहां जहां 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 नजर आती है, सब की बुनियाद वो है। तो वो जिंदगी है, अल कयूम, यानी कि वो जिंदा करने वाला है, जिंदगी देने वाला है, तो वो खुद हकीकत हयात है। अच्छा, उसके बाद जो जिंदा है, जिंदा होने के बाद किस चीज की जरूरत पड़ती है, सस्टेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो खुदा सिर्फ जिंदा करने वाला या जिंदगी देने वाला नहीं है, बल्कि पूरी कायनात को कायम रखने वाला भी है। जो पूरी कायनात को कायम रखने वाला है, उसके लिए इस बात का क्या पूछना कि वो खुद कायम है या नहीं है। ठीक है, तो यानी ये दो सिफात जो हय और कयूम हैं, ये विद रेफरेंस टू मखलूकात हैं, ना कि विद रेफरेंस टू खुदा। खुदा के हवाले से जो बात है वो शुरू के चार फिक्रों में हो गई, यानी मारिफत खुदा के हवाले से, कि जो खुद सिफात खुदा के हवाले से जो बात है वो हो गई, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, कि वो माबूद हकीकी है, तमाम कमालात का हामिल है, और मजहूल मुतलक है, यानी कि उसकी हकीकत को नहीं पाया जा सकता। जब मखलूकात के हवाले से है तो मखलूकात के हवाले से वो जिंदगी देने वाला है, क्योंकि खुद हकीकत जिंदगी है। वो तमाम मखलूकात को कायम रखने वाला है, क्योंकि खुद कयूम है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा जो वाकयाती पहलू है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम में, कि जिसके जरिए से हम इसको समझ सकते हैं कि क्या है, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा, उन्होंने इसी चीज़ के हवाले से सवाल किया खुदा से, क्योंकि एक हमारे सामने जो बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सवाल पैदा होता है फ़लसफ़ी नुक्ता नज़र से भी, कि अगर आप यानी खुदा और कायनात के रिश्ते को आप दो तरीक़ों से समझ सकते हैं। एक तरीका यह है कि क्या खुदा और कायनात का रिश्ता मशीन और मैन्युफैक्चरर जैसा है, कि एक जैसे मशीन या रोबोट बनाया, उसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया और वो चल रही है। जो सिस्टम मशीन को चला रहा है वो उसके बनाने वाले से इंडिपेंडेंट है, यानी मैन्युफैक्चरर अलग है, मशीन अलग है, उसका ऑटोमेटिक सिस्टम अलग है। मशीन चल रही है खुदकार, अब उसका उससे ताल्लुक नहीं है बनाने वाले से। क्या खुदा और मखलूक का ये रिश्ता है, या खुदा और मखलूक का रिश्ता रूह और जिस्म जैसा है, कि जैसे ही रूह की तवज्जो जिस्म से हटती है, जिस्म खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर खुदा और मखलूकात का रिश्ता रूह और जिस्म वाला है, यानी खुदा हकीकत हयात है और तमाम मखलूकात असल में खुदा की सिफत हई को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है, माजरत, दो तीन मिनट पर हम नमाज की तरफ आते हैं। ये बात कि अगर खुदा हकीकत जिंदगी है, जैसे हमारे जिस्म में मौजूद हमारी रूह हकीकत जिंदगी है, जिस्म हकीकत जिंदगी नहीं है, जिस्म की हरकत और जिस्म की जिंदगी रूह की मौजूदगी को रिफ्लेक्ट करती है। और ये रूह जब बदन का साथ छोड़ देती है तो ये जिस्म अपनी जगह पे रहता है, किसी चीज के काबिल नहीं होता। ठीक है, तो हई और कयूम के बाद यानी कि खुदा किस तरीके से कायनात को चलाता है, खुदा किस तरीके से कायनात को जिंदा रखे हुए, खुदा किस तरीके से कायनात को बरकरार रखे हुए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने वही की हुक्म दिया कि अपने इसी चीज को समझाने के लिए कि तुम अपने हाथ में दो शीशे के बर्तन ले लो, शीशे के ग्लास ले लो और उसको लेके बैठे रहो और देखो टूटने ना पाए। वो बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, कई घंटे गुजर गए कई घंटे गुजर गए। उसके बाद वो अपनी नींद को रोकने की कोशिश करते रहे, कोशिश, यहां तक कि उन्हें ऊंग आई और वो बर्तन हाथ से गिर के टूट गए। तो खुदा ने उनको समझाया कि नींद तो दूर की बात है, अगर ऊंग भी आ जाए, ऊंग का मतलब है कि जर्रा बराबर भी गाफिल हो जाए, यानी एक लहजे के लिए भी जो जिंदा है, जो जिंदगी है वो जिंदा से गाफिल हो जाए तो वो बाकी नहीं बचेगा। ला ताखुज़ुहू सिनतुन वला नौम। ठीक है, इंशाल्लाह फिर चलें, इसको नमाज का वक्त हो गया। तो अब आप लोग बताएं मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने आज आप लोगों को गलत वक्त पे बुला लिया या